धर्म तीर्थ शासक 24वें जिनेन्द्रों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्त। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्त। अशोक वृक्ष पुष्प वृष्टि और चामर प्रातिहार्यों का वर्णन अपन ने पढ़ा। अब शेष पांच प्रातिहार्य अपन देखते हैं। नंदीश्वर भक्ति में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने चौथे स्थान पर भामंडल का वर्णन किया है। जो भगवान का आभामंडल होता है वो भी एक प्रातिहार्य है। प्रातिहार्य का अर्थ होता है अलंकार। आकस्मिक मेव युग पद दिवस कर सहस्रमपगत व्यवधानम भामंडलम अविभावित रात्रिन्दिव भेद मतितरामा भाति। भामंडलम अतितरामा भाति अतिशयन शोभित। भगवान का जो भामंडल होता है वो अत्यधिक शोभित होता है। क्यों? विशिष्टम इत्याह। उसकी विशेषता क्या है वो बताते हैं। आकस्मिकम इत्यादि अकस्मात् भवम आकस्मिकम इव अतर्कित उपस्थितमेव युगपद एक हेलया दिवसकराणाम आदित्यानाम सहस्रम। अगर एक बार में एक साथ आदित्यानाम सहस्रम हजार सूर्य उपस्थित हो जाए, अपगत व्यवधानम, लेकिन वो कैसे हो? वो सूर्य अंतराल से रहे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे हजार सूर्य एक साथ में हो बिना किसी अंतराल के, तो इतना तेज होता है भगवान का आभामंडल। और मंडल शब्द आभा का अर्थ होता है प्रभा, और मंडल का अर्थ होता है ऐसा आकार। ये वृत्ताकार है मंडल जो है, वो थ्री डायमेंशनल है। उसमें ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेकिन गोल है चंद्रमंडल, आभा मंडल। तो ऐसा आकार होता है भामंडल का, और उसके अंदर बीचों बीच भगवान जिनेन्द्र होते हैं। अविभावित रात्रि रात्रिन दिव भेदम, और अविभावित अनुपलक्षित रात्रि दिवसयो भेदो विशेषो यस्मिन सति। जिस भामंडल की उपस्थिति में रात और दिन का भेद समाप्त हो जाता है, हमेशा प्रकाश बना रहता है, और जब हजार सूर्य के बराबर है तो फिर एक सूर्य तो उसके सामने फीका पड़ेगा कि नहीं? अवश्य पड़ेगा। तो भामंडल इतना तेजोमय होता है। यहां पर भामंडल का ये वर्णन रहा। इसके उपरांत अपन अन्य ग्रंथों में और देख लेते हैं। 147 में, 147 में नहीं है, कभी कभी श्लोक जल्दी नहीं मिलते हैं, तो अपन तिलोय पंडित में देखते हैं। 926वीं गाथा चतुर्थ महाधिकार की। भवसय दंसन हीदुम दर्शन मितिण सैल लूयस भामंडलम जिनाणम रविकोटि समुज्जलन जयई जयई। जिस भामंडल के दर्शन मात्र से समव शरण में सभा भूमि के अंदर उपस्थित सभी प्राणी सात भव देख लेते हैं। भामंडल में दर्शकों को अपने सप्त भव दृष्टिगोचर होते हैं और रवि कोटि समुज्जलन जयति, सूर्य की जो कोटि है, कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। कोटि का एक अर्थ होता है करोड़ और कोटि का अर्थ होता है श्रेणी। कोटि का अर्थ किनारा भी होता है। तीसरा अर्थ उसका यह है कि जो किनारे वाला भाग है उसको कोटि कहते हैं। गाढ़म बृहन निगड कोटि निगृष्ट जंगा हो, वहां पर किनारा अर्थ है और यहाँ कोटि का अर्थ श्रेणी है। अथवा अगर करोड़ भी ले लें तो आपत्ति नहीं है। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने हजार लिखा है, यहाँ प्रियति वृषभ आचार्य करोड़ ले लें। कुल मिलाकर अनेक सूर्यों के समान। अब आचार्य मानतुंग स्वामी भी तो यही लिख रहे हैं ना, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। प्रोद्यत यानी अच्छी तरह उगते हुए, दिवाकर सूरज, उनकी निरंतर भूरी संख्या यस्मिन यत्र वा। जिस भामंडल में, जिस प्रभामंडल की आभा में निरंतर अंतराल रहित भूरी संख्या, बड़ी भारी संख्या में सूर्यों का तेज भरा हुआ है, अर्थात एक साथ अगर एक पंक्ति में बिना किसी अंतराल के अनेकों सूर्य हो तो कितना प्रकाश होगा, उतना प्रकाश भगवान जिनेन्द्र के भामंडल में होता है। तो फिर यहाँ पर प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है कि यदि इतना प्रकाश भामंडल में है तब तो दर्शक अंधा हो जाएगा। एक सूर्य को भी सब लोग नहीं देख पाते। बहुत इन्हें गिने ऐसे लोग हैं जो पलक झपकाए बिना सूर्य त्राटक करने में सक्षम है। एक भोपाल के भाई हैं, एक मुंगावली में एक ब्रह्मचारी जी हैं, वो लगातार सूर्य को देख लेते हैं, उदयकालिक सूर्य को। और एक अहमदाबाद में मनीष भाई हैं, वो भी सूर्य को 45 मिनट तक देख लेते हैं। ये उनने साधना की हुई है, सूर्य साधना। तो ये बहुत दुष्कर कार्य है। फिर उसके बाद बहुत देर तक आंख बंद रखना पड़ती है सूर्य को इतनी देर देखने के बाद। फिर जब आंखें शांत होती है, विश्राम को प्राप्त होती है, तब फिर वापस आंखें खोलते हैं और फिर सब काम करने लग जाते हैं। तो फिर यहाँ तो अनेकों सूर्य के बराबर भगवान का भामंडल है, तो फिर आंखों की क्या अवस्था होती होगी वहाँ पर। तो उसका समाधान भक्तावर के भामंडल वाले काव्य में, 34वां काव्य है ना भक्तावर में, शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभूस्ते। हे विभो, आपके देदीप्यमान प्रभामंडल की भारी विभा अर्थात बड़ी भारी आभा। लोकत्रये द्वितिमतां द्वितिमाक्षिपन्ति, तीनों लोक के प्रकाशमान पदार्थों की कांति को लज्जित करती है, अर्थात सारे प्रकाशमान पदार्थ भगवान के आभामंडल के आभा के समक्ष शर्मिंदा हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। और कैसी है वो आभा? प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, उगते हुए अंतराल रहित भारी संख्या में अगर सूर्य एक साथ उपस्थित हो जाए तो वैसी उस आभा मंडल की दीप्त्या दीप्ति है। तो दीप्ति की अपेक्षा से इतने सूर्यों के बराबर हैं, लेकिन सोम सौम्याम निशामपि जयति, जो चंद्रमा से सुहावनी रात है, चंद्रमा के कारण जो रात एकदम सुहावनी लग रही, पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात विशेष होती है, तो भगवान के आभा मंडल की आभा भले ही सूर्यों के समान तेजस्वी हो, लेकिन दर्शकों को चंद्रमा किस चंद्रमा से जो उपस्थित सुहावनी रात होती है, वैसी सोम सौम्या चंद्रमा जैसी सौम्य दीप्ति रहती है, उसकी कांति रहती है। तो ये एक विरोधाभास है कि तेजस्वी होकर के भी सौम्य कैसे, अगर सौम्य आभा है तो तेजस्वी नहीं हो सकती, और तेजस्वी है तो सौम्य हो नहीं हो सकती। लेकिन समाधान ये है कि सूर्य के आभा से आंखों को कष्ट होता है, लेकिन भगवान के आभा से भाव भाव का कष्ट नष्ट होता है, और भगवान का प्रभाव है। भगवान के पास कष्ट नष्ट होते हैं, कष्ट उत्पन्न कैसे हो सकते हैं? जो कष्ट विनाशक है वो कष्टोत्पादक कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान की आभा भले ही हजारों सूर्यों के बराबर हो, लेकिन आंखों को पीड़ित नहीं करती, और सात भाव भी दिखते हैं भगवान के आभा में। ये भी एक विशेष बात है। अब जैसे वहाँ की जो बावड़ियाँ हैं समवसरण की, उसके जल में अपने प्रतिबिंब को देखो तो अपने तीन भावों के प्रतिबिंब उसमें दिखाई देते हैं, और जो मोक्षगामी जीव हैं उनको पूर्व के दो भाव और वर्तमान का एक भाव दिखता है। तो वैसे ही भामंडल की स्थिति है, सामान्य रूप से एक वर्तमान का भाव, तीन आगामी और तीन पूर्ववर्ती, ऐसे सात भाव दिखाई देते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी जीव होते हैं जिनके आगामी भाव अल्प हैं। मान लो कोई ऐसा जीव है जिसको यहाँ से देव बनकर फिर देव से मनुष्य बनकर मोक्ष जाना है, तो आगामी भव उसके दो बचे हैं। तो सात भवों की संख्या कैसे पूर्ण होगी? तो सुगम उत्तर है उसका कि वो पूर्व के भवों की गणना में वृद्धि हो जाएगी, उसमें कुल सात दिखेंगे, तो पीछे के चार दिखेंगे, अभी का एक दिखेगा और भविष्य के दो दिख जाएंगे। और कोई ऐसा जीव हो जिसको भविष्य में एक भी भव धारण नहीं करना, जैसे भरत चक्रवर्ती भगवान के समवसरण में जाते थे, तो उनको तो एक भी भव धारण नहीं करना था, उनको तो उसी भव से मोक्ष जाना था। अथवा भरत चक्रवर्ती के ही भाई पुरिमताल नगर के जो पूर्वकालीन राजा थे, और जिनको ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान ने संगीत विद्या सिखाई थी, अंक विद्या, लिपि विद्या, संगीत विद्या, राजनीति, युद्ध कला आदि सब अपने पुत्रों को पुत्रियों को ऋषभदेव भगवान ने स्वयं सिखाए थे, तो उनका क्या होगा? तो उनको वर्तमान का एक और पीछे के छह भाव दिखेंगे, ऐसे सात भावों की संख्या बन जाएगी। भगवान के पास
पीछे।
अब वो आभा तो भले ही पूरी ओर फैली हो, लेकिन जो देखने वाला है उसको भगवान के पीछे दिखाई देती है आभा। इसमें हरिवंश पुराण में ऐसा कथन है, भामंडलम प्रभोः भामंडलम, प्रभु का जो भामंडल है वो सूर्य को पराजित करने वाला है, सूर्य से बढ़ करके है। और उस भामंडल के दर्शन करने वाले सभी जीव यहां पर एक नई जानकारी है, परापरान सप्त सप्त आत्म भवान पश्यन्ति। इसमें ये दूसरा विकल्प दे रहे हैं कि वो वर्तमान भव को भी देखते हैं और आगामी सप्त भवों को और अतीत सप्त भवों को भी देखते हैं। और वहां पर कुल सप्त भवों को देखते हैं। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं। ये इसका कारण ये है कि शास्त्रों में कथन आता है कि ऐसे दो भेद क्यों हो गए, आचार्यों के कथन दो प्रकार से क्यों मिलने लगे। तो उसका समाधान ये है कि अकाल पड़ा, आततायियों का आक्रमण हुआ और कई बार कई प्रकार से इस दुष्यम काल में विषम स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो फिर एक दक्षिण की परंपरा हो गई और एक उत्तर की हो गई। तो उत्तरा पथ वाली जो परंपरा से आई हुई जानकारी है उसको उत्तर प्रतिपत्ति कहते हैं, और जो दक्षिणा पथ से आई हुई जानकारी है उसको दक्षिण प्रतिपत्ति कहते हैं। अब फिर ऐसी स्थिति में जहां दोनों में अंतर पाया जाता है तो किसको सत्य मानना। जैसे मान लो देवगति संबंधी कोई वर्णन है और वो वर्णन दक्षिण प्रतिपत्ति में अलग मिल रहा है, उत्तर प्रतिपत्ति में अलग मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना। तो मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि मिथ्यात्व के भय से दोनों का संग्रह करना। ऐसा क्यों? तो आचार्य विमल सागर महाराज श्री ने समाधान दिया था, क्योंकि आज कोई केवली अथवा श्रुत केवली नहीं है। तो यदि आपने ये निर्णय किया कि उत्तर प्रतिपत्ति सत्य है और केवली श्रुत केवलियों के ज्ञान में दक्षिण प्रतिपत्ति सत्य निकली, तो आपने सत्य को असत्य मानकर मिथ्यात्व को पुष्ट कर लिया। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जहां ऐसी परिस्थिति आ जाए, दो मान्यताएं मिल जाए, तो फिर उनका संग्रह कर लो। और आगामी भव में यदि जाति स्मरण हो जाए तो केवली श्रुत केवलियों का समागम पुण्य योग से बनता हो तो वहां जाति स्मरण में जो आया है कि वहां पर दो प्रकार का कथन था, अब किसको सत्य माना जाए पूछ लेना। अभी आकुलता मत करना, क्योंकि बिना प्रमाण के न तो किसी को सत्य प्रमाणित किया जा सकता है न किसी को असत्य। इसलिए उन्होंने लिखा कि संग्रह कर लो। तो संग्रह करने में अपना जाता क्या है और इतनी उतावली क्या है आपको निर्णय की। जब निर्णय के साधन मिले तब करना, जब तक नहीं है तब तक साधन मिले इसकी तैयारी कर लो। इसकी क्या तैयारी है कि आप इस जीवन में ऐसे काम करो कि आगामी भव में केवली और शुद्ध केवली मिल जाए। बहुत सरल कार्य नहीं है ये। आप कल्पना करो कि अपन ने पिछले जन्म में कैसे काम किए हैं जिसके कारण अपने को धर्म तो मिला लेकिन केवली और श्रुत केवली प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले। तो आप सोचो कि ये किसी पुण्य का फल है क्या, केवली और श्रुत केवली न मिलना? कदापि नहीं। अपन ने कोई ऐसे खोटे कर्म किए हैं जिसके कारण अपने को साक्षात केवली श्रुत केवली का समागम नहीं मिला, लेकिन अपन ने कुछ सत्कर्म किए हैं जिसके कारण उनकी वाणी अपने को जितनी मिल रही है उतनी मिली है। जितनी है उतनी नहीं मिली है, वो तो आपको परिश्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, तब पता चलेगा। पूरा जीवन निकल जाएगा तो भी स्वाध्याय पूरा नहीं हो सकता, इतने ग्रंथ हैं। अब उस काल में उन्होंने कैसे किया होगा ये अपन नहीं कह सकते। वो तो वैसे गुरु होते थे उस काल के कि 12 वर्ष में चारों अनुयोग पढ़ा देते थे वो अपने शिष्य को। बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं होने देते थे। 12 वर्ष का समय होता था, ये दक्षिण भारत के ग्रंथों में आज भी कन्नड़ लिपियों में उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत के ग्रंथों में कहीं पढ़ने में नहीं आया हमें, लेकिन जब हम दक्षिण गए थे तब वहाँ पर कन्नड़ भाषा के जो ग्रंथ थे उसमें से एक ग्रंथ वड्डाराधने, एक वामन आचार्य द्वारा विरचित मेरु मंदर पुराण, एक धर्मसेन आचार्य द्वारा विरचित धर्मामृत नाम का ग्रंथ, नहीं धर्मसेन आचार्य नहीं है, कोई अन्य आचार्य, तो ये सारे कन्नड़ ग्रंथ। इनमें से कुछ ग्रंथ तो मेरु मंदर पुराण और धर्मामृत ग्रंथ का अनुवाद तो देशभूषण आचार्य महाराज ने कर दिया था, लेकिन वड्डाराधने का हिंदी अनुवाद नहीं हो पाया। तो फिर वहाँ के एक प्रोफेसर अजित प्रसाद जी थे मूडबिद्री में, तो उनसे हमने 6 महीने तक वाचना सुनी उस ग्रंथ की। और उस ग्रंथ में सर्वत्र उसमें 19 वृत्तांत हैं, उपसर्ग और परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने वाले महामुनियों के 19 दृष्टांत हैं। अब देखिए, महामुनि शब्द वास्तव में वहां शोभित होता है। आज जिनको मुनि शब्द का महत्व ज्ञात नहीं है उनको लग सकता है कि मुनि शब्द कम पड़ रहा है, लेकिन आगम में अगर मुनि शब्द का अर्थ समझोगे तो पता चलेगा कि मुनि शब्द इतना बड़ा है कि आज किसी में मुनि शब्द घटित होना दुष्कर है। साधु शब्द तो घटित हो जाएगा, लेकिन सिद्धांत में जाकर के आप देखोगे मुनि शब्द का अर्थ आज कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि पंचम काल में 1000 वर्ष के अंतराल में एक मुनि होंगे, ऐसा तिलोय पंडित्य में कथन है। क्योंकि मुनि उनको कहते हैं जिनके पास अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान अथवा केवल ज्ञान हो। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि 1000 वर्ष में एक मुनि को होगा, और वो भी कल्कि के काल में होगा। तो उस अपेक्षा से विचार करो तो मुनि नहीं है, लेकिन समभिरूढ़ न्याय से देखो तो मुनि शब्द जिनके लिए प्रचलित है वो जैन साधु हैं। जैन साधुओं को मुनि कहते हैं। एक वैदिक विश्व नाम की संस्था है महाराष्ट्र में नागपुर में उनका केंद्र है, तो वहां के एक सज्जन, एक संभवतः उसके पदाधिकारी होंगे, वो मुनि शब्द का अर्थ और ऋषि शब्द का अर्थ बताते हुए क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि ये दो शब्द जो है ऋषि मुनि आपने कई बार सुना होगा और अन्य मतों में एकदम सबके मुंह पर है ऋषि मुनि। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, हर गोविंद मुरार का उनका नाम था, उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति दो परंपराओं से मिलकर बनी हुई है, दोनों परंपराओं में मतभेद अवश्य है, मन भेद नहीं, और उन दो परंपराओं के नाम हैं वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा। दोनों परंपराओं में संत होते हैं, वैदिक परंपरा के संत को ऋषि कहते हैं और श्रवण परंपरा के संत को मुनि कहते हैं। बात बड़ी सुंदर है और चिंतनीय भी है। यद्यपि श्रवण संघ में, जैन श्रवणों में, शास्त्रों के अंदर चार भेद मिलते हैं, ऋषि मुनि यति अनगार, तो वो उन्होंने जिस विवक्षा से, जिस अपेक्षा से दो भेद बताए वैदिक और श्रवण परंपरा के साधु, वो उस अपेक्षा से उचित है। लेकिन ये जो सैद्धांतिक भेद है उसमें उन्होंने, शास्त्रकारों ने लिखा है कि मुनि शब्द प्रत्येक साधु पर लागू नहीं होता, सारे जैन साधु मुनि की श्रेणी में नहीं आते। तो मुनि की श्रेणी में कौन आता है? तो अपन क्रम से उन चारों भेदों को देख लेते हैं। कि जैन श्रमण है, ऋषि रिद्धि प्राप्ता ऋषयः, जिनको रिद्धि प्राप्त है वो ऋषि कहलाते हैं। जैसे एक आशीर्वाद की रिद्धि होती है वो कुछ साधुओं को प्राप्त होती है, सबको नहीं। आशीर्वाद भले ही सब देते हों लेकिन कुछ साधुओं के आशीर्वाद फलते हैं, उनको वो रिद्धि प्राप्त होती है। इस काल में लघु रिद्धियों का निषेध नहीं है, महारिद्धियां नहीं हो सकती। तो आज भी ऐसे कुछ साधु हैं जिनका आशीर्वाद फलता है, पहले भी थे, वो अगर आशीर्वाद दे दे तो कार्य सिद्धि हो जाती है। अब इसमें कारण कार्य विधान कैसे लागू होगा ये प्रश्न आएगा ना, क्योंकि तुरंत लोगों का ध्यान, जो भक्त लोग हैं उनका ध्यान चमत्कार में जाता है, जो परीक्षा प्रधानी लोग हैं उनका ध्यान कारण कार्य विधान में जाता है। अब जैन दर्शन स्याद्वाद में है इसलिए दोनों का उत्तर है। कि अगर आप उन ऋषि की क्षमताओं को देखो तो वो निस्संदेह उनके पास असाधारण क्षमता है, क्योंकि साधारण लोगों के पास वो क्षमता हो ही नहीं सकती। तो उस अपेक्षा से कारण कार्य विधान पर ध्यान नहीं जाता, उस अपेक्षा से यही स्वीकृत हो जाता है कि वो उनका अतिशय है, ठीक है। और अगर कारण कार्य विधान पर अपन दृष्टिपात करते हैं तो फिर लगता है कि कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे मान लो उनके आशीर्वाद से जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है वो फलित हो रहा है, तो इसका मतलब वो कार्य हुआ। जैसे उदाहरण के लिए किसी को कैंसर है और उन ऋषि ने आशीर्वाद दिया कल्याणमस्तु, उसका कैंसर ठीक हो जाता है। तो इसमें कोई कोई घटनाक्रम हुआ है, कुछ तो हुआ है। एक तो उनमें क्षमता थी, ये पक्की बात है, पर उनके पास जो पहुंचा, सारे कैंसर वाले क्यों नहीं पहुंच पाते वहां पर? क्योंकि सबका नसीब एक जैसा नहीं है। तो कर्म आ गया कि नहीं? उनका पुण्य आया ना, लेकिन वो पुण्य अस्पताल में जाने पर कोई काम का नहीं है, वो ऋषि का आशीर्वाद मिलने पर वो पुण्य कहां तक काम आया? रोग ठीक करने में उसका कोई योगदान नहीं रहा उस पुण्य का? रोग ठीक कराने वाले के पास पहुंचाने तक वो पुण्य कार्यकारी सिद्ध हुआ, यानी उसने वहां तक पहुंचा दिया। अब जो काम होगा वो गुरु की कृपा से होगा, संसार की कोई दूसरी शक्ति वो काम नहीं कर सकती जो गुरु की कृपा करेगी। अब कुछ ऐसे नौकर्म होते हैं, जैसे ये गुरु नौकर्म बन गए, बाह्य निमित्त बन गए, और वो सामने वाले जीव के पास पुण्य और पाप सब कुछ पैकेज में पड़ा हुआ है, सबके पास है। कुछ पुण्य भी है सबके पल्ले में, कुछ पाप भी है। कुछ लोगों के पाप कम है, कुछ लोगों के पुण्य कम है। क्योंकि ये कली काल है, कली शब्द का अर्थ पाप होता है, तो यहाँ पर सारे जीवों के पाप की मात्रा थोड़ी पुण्य की तुलना में अधिक होती है। और कुछ लोगों का पुण्य रिजर्व में है, यानी गाड़ी में जैसे पेट्रोल रिजर्व में आ जाता है, तो वो लाल एरिया में, जैसे बैटरी खत्म होने के पहले भी वो कुछ संकेत आते हैं उसमें, कुछ डिवाइसेस में, वो जो बैटरी वाला वो ऊपर में वो आइकन बना रहता है, कुछ ऐसा आकार बना रहता है, तो उसमें वो लाल दिखाने लगता है, उसके पहले वो हरी रहती है। तो ऐसी स्थिति भी बहुत सारे जीवों की हो चुकी है इस कलिकाल में, कि उनका पुण्य रिजर्व में है, अब खल्लास होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, और वो भरवा भी नहीं रहे, पेट्रोल पंप जा ही नहीं रहे, मंदिर आ ही नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में वो खतरे में है, कहीं जंगल में गाड़ी अटक गई तो क्या करोगे, और वहां जंगली जानवर होंगे तो क्या करोगे, मान लो कोई रींछ आ गया कैसे बचोगे, कोई शेर आ गया, कोई चीता आ गया, लकड़बग्घा आ गया, भेड़िया आ गया, व्याघ्र आ गया, या फिर कोई मत्त हाथी आ गया, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। तो इसलिए गाड़ी को ठीक रखना जरूरी है। ठीक है, अपन शरीर को संभालते हैं, मन को भी थोड़ा बहुत संभालते हैं, भावों को भी संभालते हैं, लेकिन आत्मा को भी संभालना जरूरी है। तीन से काम नहीं होता, चारों को संभालना जरूरी है। तो आत्मा को कैसे संभालना? एसो पंच नमो यारो सब पावक पणासण मंगलानंच सब वेसिम पडम हवई मंगलम। यह पंच नमस्कार सब पापों का प्रणाशक है, और सर्व मंगलों के मध्य यह प्रथम मंगल है। तो पंच नमस्कार करना आवश्यक है, और नमस्कार अंतिम क्रिया है, तो उसके पूर्व की जो क्रियाएं होंगी उसके साथ नमस्कार करो आप। नमस्कार तो करना ही है, छोड़ना नहीं है, लेकिन पूरी विधि से करो ना। तो नमस्कार के पहले कौन सी क्रिया है? पहले बताया था मैंने, अंजेमी, पूजेमी, वंदामी, नमनसामी, ये चार है। तो फिर अंछे में पूजे में वंदा में प्रमाद आता है, अरे हम देख कर लेंगे अभी 10 दिन आएंगे तब करेंगे। बहुत लोगों के ऐसे ख्यालात होते हैं कि 10 दिन आएंगे तब कर लेंगे, तो अब 10 दिन आएंगे तब करेंगे, इस पर एक श्लोक है, करिष्यामि 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 इति चिंतया, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। करूंगा 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 इस विचार में पढ़कर संसारी प्राणी ये भूल गया, मरूंगा मरूंगा मरूंगा। महाभारत में एक ऐसे ही दृष्टांत आता है कि एक बार दान का कोई प्रसंग आता है पांडवों के समक्ष, तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर उन पांडवों में प्रधान थे, सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे, तो फिर वो जिसको दान देना था उसको युधिष्ठिर बोलते हैं कि तुम कल आ जाना। तो फिर भीम नृत्य करने लग जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अब मिठाइयां बांटो, आज बड़ी खुशी का अवसर है। तो अर्जुन भी बड़े आश्चर्यचकित होकर भीम की तरफ देखता है, युधिष्ठिर तो अत्यंत अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया भीम को अचानक से, ये अलग ही दिमाग रहता है इसका, भीम का तो पता नहीं क्यों इतना उछल कूद कर रहा है और उत्सव की क्या बात कर रहा है। तब भीम कहते हैं कि भैया आपने उसको कल का वचन दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने 24 घंटे के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, तो इसलिए मैं उत्सव मना रहा हूं। युधिष्ठिर तत्काल भीम के कथन का मर्म समझ जाते हैं और उस ब्राह्मण को रोकते हैं कि रुको विप्र, मैंने जो कहा था कि कल तुम्हें दान दूंगा, अपने शब्द वापस लेता हूं, तुम इसी समय दान ले लो, क्योंकि मैंने 24 घंटे के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की है, भले ही मेरी आयु हो तो मैं जी जाऊं, लेकिन मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला इस समय नहीं बना हूं। तो सब पावपणा सणु अंचे में पूजे में वंदामी के साथ में 10 दिन कर लूंगा कर लूंगा, कोई अपन गारंटी नहीं है उसकी, कर लूंगा। बहुत से लोग कितनी बातें सोचते हैं ना कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन बस लेकिन के बाद कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसके बाद जो पहले बोला था उससे उल्टा ही आता है, लेकिन किंतु परंतु इफ बट, ये सारी शब्दावलियां हैं। तो 7 भाव के दर्शन भगवान के भामंडल में होते हैं, तो ये पुन्नाट संग्रचित ग्रंथ में ऐसा कथन आया है और यतिवृषभ आचार्य महाराज के ग्रंथ में 7 भाव का वर्णन आया है, कुल मिलाकर 7 भाव। अथवा हो सकता है कि अर्थापत्ति करने में अपन कहीं चूक रहे हों, हो सकता है दोनों के अर्थ एक हों, उसमें 7 भाव लिखा हुआ है लेकिन 7 भाव आगे पीछे के मिलाकर ये अर्थ तो अपन निकाल रहे हैं ना, संभव है आगे के साथ पीछे के साथ और वर्तमान का एक ऐसे मिलाकर के पूरे भावों की गणना होती हो, तो इसलिए अपन उसमें ज़्यादा शंका कुशंकाओं में न जा करके स्वीकार करते हैं कि भगवान के भामंडल में अनेक भाव दिखते हैं, बस इतना लिख लो ना, अनेक शब्द में क्या जाता है, अनेक में सब आ जाता है। तो आप सोचो कि राजा शरणिक को जब अपना नरक भाव दिखता होगा तब कैसा लगता होगा? और भरत चक्रवर्ती के पुत्र विवर्धन कुमार आदि, वर्धन कुमार आदि नाम भी आता है, विवर्धन आदि नाम भी आता है, ऐसे 923 पुत्र थे भरत चक्रवर्ती के। वो जब वहाँ जाते थे भगवान के पास तो उनको भी अपना भाव दिखता था पिछला, तो वो पूर्व भावों में एकेंद्रीय जीव थे। उनको कैसा लगता होगा कि अरे हम वहां से यहाँ आ गए। फिर अंततः वो दीक्षा ले लेते हैं और उसी भाव से केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भरत चक्रवर्ती को तो बड़ी चिंता थी उन पुत्रों की कि ये बोलते ही नहीं है, वो बोलते ही नहीं थे किसी से। तब उनने भगवान से पूछा भी था कि भगवान तीर्थंकर के कुटुंब में ऐसे गूंगे बहरे लूले लंगड़े इस प्रकार के जीव तो पैदा नहीं हो सकते, और अभी तो आपकी आयु भी पूरी नहीं हुई है और आपके जीते जी ऐसी संतति जो गूंगी है, क्या बात है। तब भगवान ने कहा कि वो गूंगे नहीं है, वो मूक नहीं है, वो बोल नहीं रहे हैं बस, और तुम देखना तुम्हारे देखते देखते वो दिव्य ध्वनि सुनकर दीक्षा लेंगे और दीक्षा लेकर केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और वैसे ही हुआ था। विभामंडल एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रातिहार्य है। जैनम जय दुशासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महा सुख को।